मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 15 जनवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन 13 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं राजेश कुमार सोनीपत हरियाणा, संदीप कुमार करनाल हरियाणा, संदीप कुमार कानपुर नगर उत्तर प्रदेश, सुरजीत कुमार विश्वकर्मा आपका गांव है भोपालपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, गरिमा सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश, रशीदा खान भोपाल मध्य प्रदेश, प्रणवराज बेगूसराय बिहार, प्रतीक चंद्रा बरेली उत्तर प्रदेश, विलिंद पात्रे भंडारा महाराष्ट्र, प्रक्षाम चौधरी कानपुर उत्तर प्रदेश, रवि कुमार आपका गांव है दहलियापुट जिला एटा उत्तर प्रदेश, प्रशांत कुमार अत्री मेरठ उत्तर प्रदेश और अर्चना सरोज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप बात कह लीजिए, बधाई कह लीजिए, शुभकामनाएं कह लीजिए, सूचना कह लीजिए। आप सबको मालूम होगा कि पिछले साल जो प्री के एग्ज़ाम हुए थे फिर मेंस के हुए, प्री में जो सेलेक्ट हुए उन्हें मेंस में बैठने का अवसर मिला और जो स्टूडेंट मेंस में बैठे थे उनके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, मेंस का रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों इस रिजल्ट के दो ही परिणाम हुए होंगे, कुछ सेलेक्ट हुए होंगे और कुछ सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन्हें मैं एकेडमिक अपनी पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ वो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा कर सकें इसके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, लगभग आधे कई गुना स्टूडेंट ऐसे होते हैं सेलेक्ट किए हुए से कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, उनके लिए सच पूछे तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि आगे वो अपनी सफलता की मंजिल तक पहुंच सकें। और मैं एक बात यहां और कहना चाहूंगा मित्रों कि जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है इनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इससे पहले सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। इसका मतलब है कि सिलेक्शन का न होना भी कहीं ना कहीं आगे भविष्य में सिलेक्शन होने की एक प्रक्रिया ही है, इसीलिए बहुत अधिक उदास और निराश होने की बात नहीं है। ये एक बड़ा एग्जाम है और इसमें इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट ऐसे बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं उन्हें अपने दिमाग को इतना बड़ा और मजबूत बनाकर रखना भी चाहिए। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे पुलिस आयुक्त प्रणाली के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। रायसीना संवाद शुरू हो गया है, इसके बारे में मैं अभी आपसे कोई भी बात करने नहीं जा रहा हूं, ये अभी सम्मेलन चल रहा है, जब सम्मेलन पूरा हो जाएगा तब हम लोग इस पर मुकम्मल तरीके से बातें करेंगे। पहले कुछ दूसरी बातों को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों एक खबर अखबारों में आपने पढ़ी होगी, भले ही वो बहुत ही प्रोमिनेंटली न हो लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसे बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से छापा है और वो है कि जो केरल की सरकार है उस केरल की सरकार ने बकायदे एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और उसने ये रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि अभी जो नागरिक संशोधन अधिनियम आया है उसे अवैध घोषित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, इस पर सुनवाई कर सकता है। और यहां जो आपके लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है जानने की वह है कि जो केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है वह अनुच्छेद 131 के अंतर्गत, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 131 क्या है। अनुच्छेद 131 एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने कुछ विशेष अधिकार दिए हैं न्यायिक अधिकार, और उस अधिकार का संबंध किससे है कि यदि राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद है या राज्यों के बीच कोई विवाद है और उसमें कोई संवैधानिक यानी विधिगत मामला जुड़ा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है, यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में जब इस तरह के अनुच्छेद कोई चर्चा में आते हैं तो उस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां मैं आपसे एक तथ्य की चर्चा और करना चाहूंगा कि केरल सरकार ने जो अपनी याचिका दायर की है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि CAA का विवाद थमा नहीं है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो यह भी आपको मालूम होने चाहिए कि उसने क्या बातें कही हैं केरल की सरकार ने। उन्होंने पहला जो प्ली दिया है वो ये दिया है कि ये हमारे यहां संविधान का जो करेक्टर है, समानता का अधिकार का चरित्र है और धर्मनिरपेक्षता का, राइट टू इक्वलिटी, और वायलेट ऑफ सेकुलरिज्म कर रहा है, दोनों मतलब जो हमारी धर्मनिरपेक्षता का चरित्र है उसका उल्लंघन कर रहा है और जो समानता का अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहा है। उसके लिए फिर उन्होंने डिटेल्स दी है, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान आए हैं उनके लिए ये क्यों लागू नहीं होता, ठीक इसी तरह से श्रीलंका से भी मुस्लिम आए हुए हैं उनके ऊपर ये लागू क्यों नहीं हो रहा है, श्रीलंका से कुछ तमिल भी आए हुए हैं, कुछ हिंदू माधेजी हैं, नेपाल से आए हुए मधेसिया उन पर ये लागू नहीं होता है, अफगानिस्तान से हजारा लोग आए हुए हैं, हजारा वहां की कम्युनिटी है उन पर लागू नहीं होता है, भूटान से क्रिश्चियन आए हुए हैं, मतलब ये देश शामिल नहीं है ना, आपको मालूम है कि उसमें केवल तीन देश शामिल है, तो भूटान से और श्रीलंका से कुछ बुद्धिस्ट आए हुए हैं उन पर ये लागू नहीं होता है। तो इस तरीके से यह हमारे संविधान का जो मूलभूत चरित्र है सेकुलरिज्म का और समानता के अधिकार का, उसका उल्लंघन करता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिटेल्स थे जिसको लेकर के उन्होंने अपनी याचिका दायर की है, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, ताकि अगर कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकें। मित्रों आज के अखबारों में ये खबर है कि जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महातीर मोहम्मद, इन्होंने इससे पहले भारत में जो CAA की जो घटना चल रही है उसकी आलोचना की थी। अब मामला चाहे जो भी हो, लेकिन अभी इसके बाद फिर जो घटना घटी है कि वहां से जो पाम ऑयल भारत आना था, भारत ने वहां से पाम ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया है, तो उसको लेकर के उन्होंने जो PM हैं हमारे मलेशिया के, उन्होंने थोड़ी सी आपत्ति दर्ज कराई है। तो आपको केवल बात ये मालूम होनी चाहिए कि जो पाम ऑयल की खरीदी थी जिसे भारत ने इनकार कर दिया है, जिससे वो किस देश से था, तो वो मलेशिया से था, और मलेशिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि उसके पीछे वो कारण है कि उन्होंने CAA या और अनुच्छेद 370 इन दोनों की आलोचना की थी। एक शब्द है मित्र जो आज अखबारों में छपा है, जेनोबोट्स। कभी कभी प्री में इस तरह के शब्दों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं। जेनोबोट्स बेसिकली ये है क्या, ये एक रोबोट है, लेकिन ऐसा वैसा रोबोट नहीं है, ये एक तरह से ये जीवित रोबोट है, विश्व का पहला जीवित रोबोट, और ये बहुत छोटा है, नई तरह की जीवित मशीन इसे आप कह सकते हैं, ये मांस के एक छोटे से टुकड़े की तरह दिखता है और इसका जो साइज है वो 1 मिलीमीटर के करीब है बस। अफ्रीकी एक मेढक है, उसके स्टेम सेल से इसे बनाया गया, ये जीवित रोबोट है, और इसकी खासियत यह है कि ये किसी के भी शरीर में जा सकता है, मतलब डाला जा सकता है, और बकायदे वो पूरे शरीर में चक्कर लगाता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा और अपना कारोबार करता रहेगा, यानी कि इससे इलाज की बहुत बड़ी प्रणाली विकसित की जा सकती है, और खासकर कैंसर वगैरह के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को नष्ट करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक बहुत अद्भुत किस्म का यह आविष्कार है, नाम आपको मालूम होना चाहिए, जेनोबोट्स। फ्रेंड्स आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं, और वह है पुलिस आयुक्त प्रणाली, जिसे कहते हैं पुलिस कमिश्नरी सिस्टम। दरअसल भारत में जो प्रशासन की प्रणाली है, मैं बहुत ही बेसिक चीजें केवल आपके सामने रखूंगा, हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक प्रणाली है, देखिए इस सब का अनुभव आप सबको बहुत स्पष्ट रूप से होगा ही, तो जब भी आप जिले में जाते हैं, अगर छोटे जिलों में रह रहे हैं, तो वहां आप किसको जानते हैं, कलेक्टर और SP दो लोगों को जानते हैं, एक सिविल, एक पुलिस अधिकारी है और दूसरा सिविलियन ऑफिसर है, राइट। तो जिले की जो व्यवस्था होती है उसके केंद्र में होता है कलेक्टर, जिसे कुछ राज्यों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, DM कहते हैं, कुछ राज्यों में डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, तो जो मुख्य व्यक्ति होता है वो डिप्टी कमिश्नर, DM या कलेक्टर होता है, राइट। उसको असिस्ट करता है आईपीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी, जिसे हम एसपी कहते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। पूरी जो कानून और व्यवस्था की जो व्यावहारिक जो जिम्मेदारी है वो पुलिस ऑफिसर संभालता है, एसपी संभालता है। लेकिन बहुत अवसर ऐसे आते हैं जबकि एसपी अपनी तरफ से निर्णय नहीं ले सकता, उसे बकायदे कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती है। इसीलिए देखिए कि कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसके दोनों पद होते हैं, है ना। जब इस तरह के निर्णय, मान लीजिए धारा 144 लगाना है, कहीं एसपी को लग रहा है कि यहां 144 धारा लगाई जानी चाहिए या यहां गोली चलाने जाने की बहुत जरूरत है, तो अपने मन से निर्णय नहीं ले सकता, उसको बकायदे कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर कमिश्नर से लेनी पड़ेगी, और तभी वो इस तरह के काम कर सकता है। यानी कि कलेक्टर केंद्र में होता है और जो एसपी है उसे असिस्ट करता है, या एसपी को आप पुलिस अधिकारी समझ लीजिए, ठीक है। ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, बस सिंपल सी बात है कि यहां से कलेक्टर को हटा दिया गया है। हटा दिया गया नहीं कि कलेक्टर का पद वहां होगा बकायदे, वो अपना काम करेंगे, उनके दूसरे बहुत से काम है, डेवलपमेंट के काम है, रेवेन्यूज के काम है, दूसरे बहुत से काम है, सरकार के इतने विभाग हैं, उन सब में कोऑर्डिनेट करना है, सरकार की नीतियों को लागू करना है, ढेरों काम है। लेकिन जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, वहां जो पुलिस ऑफिसर होगा वो सर्वेसर्वा होगा, बस कुल मिलाकर यह है। अब स्वाभाविक है कि अब जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली जहां स्थापित की जाएगी, वहां जो सर्वे सर्वा अधिकारी होगा वो काफी हायर रैंक का अधिकारी होगा, वो एसपी के लेवल का नहीं होगा, वो बड़े रैंक का होगा। इसीलिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली छोटे शहरों में लागू नहीं की गई है, बड़े बड़े शहरों में लागू की गई है जहां कानून और व्यवस्था सबसे अहम मुद्दा होता है। आप देखिए कि दिल्ली में, दिल्ली के जो लोग हैं या दिल्ली में जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे रह करके, वो जब अखबार पढ़ते होंगे तो हमेशा अखबारों में उनको पुलिस कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन सबको ही पढ़ने को मिलता होगा। जबकि जो छोटे जिलों में स्टूडेंट रहे उनको कलेक्टर के बारे में पढ़ने को मिलता होगा, एसडीएम के बारे में पढ़ने को मिलता होगा। इसका मतलब है कि अब पुलिस के पास सारे अधिकार आ जाएंगे, सारे अधिकार पुलिस के पास होंगे। यानी यूं कह लीजिए कि अगर हम प्रशासनिक भाषा में बात करें तो पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधिकार होंगे। अगर उसे कहीं भी जरूरत महसूस होती है, आपात स्थिति मालूम पड़ती है, तो बकायदे वो अपने विवेक से ही 144 धारा लागू कर सकेगा, उसे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। कोई जैसे धरना देना चाह रहा है तो अब वो कलेक्टर के पास नहीं जाएगा, वो पुलिस आयुक्त के पास जाएगा, या जो भी सिस्टम बना हुआ प्रणाली की मैं बात कर रहा हूं, तो पुलिस ही उसे धरना देने की अनुमति देगी या धरना देने की अनुमति देने से इनकार कर देगी। कब फायरिंग करना है, कब पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग करना है, इसके बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार अब पुलिस के पास ही होगा। यानी कि अब उसे किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, किसी के भी आदेश का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। यहां मैं एक तथ्य और बताना चाहूंगा कि ये कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के समय में भी, जो हमारे बहुत बड़े बड़े उस समय के नगर थे जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये जो शहर थे, ये प्रेसिडेंसी इनको बनाया गया था और यहाँ का जो मुख्य अधिकारी होता था वो पुलिस ही होता था, वहाँ पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था ही लागू थी। तो दोस्तों, ये मैंने बहुत ही बेसिक पॉइंट्स आपको पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बताए हैं। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही अपने कुछ शहरों के लिए, बड़े जो नगर हैं वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है, तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ बातें की जानी चाहिए। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, कुमार बसंत प्रयागराज से, हिमांशी याज्ञ सेनी, सत्यम कुमार नई दिल्ली से, दिव्य प्रकाश सिसोदिया नरावली उत्तर प्रदेश से, और मुकेश श्रीवास्तव बहराइच उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।